ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
झगड़ा हो रहा है।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी अध्याय का हमने एक और श्लोक चुना है जिसमें बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है।
थोड़ा जोर से ये हो सकता है,
मेरी आवाज। तस्मान् नरो संगं सुसंगं जाता ज्ञान स्नेह विवरक्न मोह हरिं तह कथाना श्रुतव्यं लब्धा स्मृति या यति परम आद्वना। तस्मान् नरो संगः सुसंगः जातः ज्ञानात् नैव विवरक्न मोह हरिं तदिह कथना श्रुतव्यम् लब्धा स्मृति यत् अति परम अद्वना। तस्मान् नरो संगः सुसंगः जातः ज्ञानात् नैव विवरक्न मोह हरिं तदिह कथना श्रुतव्यम् लब्धा स्मृति यत् अति परम अद्वना।
तस्मान् नरो संगः सुसंगः जातः ज्ञानासिनेहैव विवक्षमोह हरिं तदिह कथना श्रुताभ्याम् लब्धा स्मृते याति पारमध्वम्।
माताजी, इस शब्द
तस्मात् इस कारण से नरः प्रत्येक व्यक्ति असंग सांसारिक पुरुषों के संसर्ग से विरक्त होकर सुसंग भक्तों की संगति से जात उत्पन्न ज्ञान असेना ज्ञान रूपी तलवार से यह इस भौतिक जगत में एवं यहाँ तक कि देवी क्रमोह मोह छिन्न भिन्न हो जाता है। हरे श्री भगवान तदेहा उनके कार्यों का कथन श्रुताभ्याम श्रवण तथा कीर्तन इन दो विधियों से लब्ध स्मृति कोई चेतना प्राप्त की जाती है या अति प्राप्त करता है, अति पारम परम अंत अध्वना परम धाम का अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। भक्तों की संगति मात्र से पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और फिर ज्ञान की तलवार से सांसारिक मोहों को छिन्न भिन्न किया जा सकता है। भक्तों की संगति से ही श्रवण तथा कीर्तन श्रवणम कीर्तनम द्वारा श्री भगवान की सेवा में अनुरक्त हुआ जा सकता है। इस प्रकार सुप्त कृष्ण भावनामृत जागृत की जा सकती है और कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा इसी जीवन में परम धाम को जाया जा सकता है। आवृत्ति करेंगे, भक्तों की संगति मात्र से पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और फिर ज्ञान की तलवार से सांसारिक मोहों को छिन्न भिन्न किया जा सकता है। भक्तों की संगति से ही श्रवण तथा कीर्तन श्रवणम कीर्तनम द्वारा भगवान की सेवा में अनुरक्त हुआ जा सकता है। इस प्रकार सुप्त कृष्ण भावनामृत जागृत की जा सकती है और कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा इसी जीवन में परम धाम को जाया जा सकता है। तात्पर्य, भावबंधन से मुक्त होने के लिए सांसारिक व्यक्तियों की संगति त्याग करके भक्तों की संगति करनी चाहिए। इस संबंध में सकारात्मक तथा नकारात्मक विधियां बताई गई हैं। भक्तों की संगति से सुप्त कृष्ण भावनामृत जागृत होती है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन सबों के लिए यह अवसर प्रदान करता है। जो भी कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है उसे हम आश्रय देते हैं। हम उनके रहने तथा भोजन की व्यवस्था करते हैं जिससे वे कृष्ण भावनामृत का शांतिपूर्वक अनुशीलन करके इसी जीवन में परम धाम को प्राप्त हो सकें। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के अंतर्गत महाराज रघुगण तथा जड़ भरत की वार्ता शीर्षक 12वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।
ओम ज्ञानंत विनंदस्य ज्ञानंजनम चक्षुर्मीलितानियेनाम तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं सावितामेन स्वयं रूपकलामयं जाने वन्देऽहं श्रीयुतपदकमलं गुरुभैरवं श्रीरूपां सगजतं सहगना रघुनाथान्वितं संसजेवं सद्वैतं सुवधूतं परिजनासहितं कृष्ण श्रीराधा कृष्णापदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं स हे कृष्ण धप्ता कंचन गौरांगी जय श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्ण तस्मान संग संग जाता ज्ञानासीन विवक्न मोह हरिम तदीय कथन श्रुतव्यम लब्धासुत अति परम अद्वना। तो जज भारत महाराज रघुनंद को उपदेश दे रहे हैं, जैसे हमने इस अध्याय में पढ़ा। महाराज रघुनंद ने निवेदन किया था जद भारत है कि और गहराई के साथ और सरल रूप से जो संदेश आपने दिया है प्रस्तुत कीजिएगा। पिछले रिहाई में जद भारत उपदेश दे चुके हैं, पर जब भी रघुमहाराज रघुना ने निवेदन किया मुझे और सरलता से समझाइए, तो इस अध्याय में महाराज रघुना को वही दिव्य संदेश दिया जा रहा है ज्यादा सरलता के साथ। और अगले अध्याय में आप देखोगे कि जद भारत से फिर निवेदन करेंगे रघुना और सरलता से सिखाओ समझाओ। तो बार बार सुनने की आवश्यकता है, जैसे हम कल कह रहे थे हम इस भौतिक संसार में माया का प्रभाव इतना तेज है कि हम सब भक्तों के लिए नियमित रूप से रोज प्रयास करना चाहिए इस संदेश को स्वीकार करने के लिए, तो ही ये संदेश हमारे हृदय में बैठेगा। तो आज के श्लोक में जन भरत कह रहे हैं कि हमें भक्तों की संगत में रहना चाहिए। आप सब जानते हो कि भक्तों की संगत की आवश्यकता का वर्णन हमारे शास्त्रों में बार बार किया जाता है, बार बार। चैतन्य चरितमृता में वह प्रसिद्ध श्लोक है, साधु संग सर्वशास्त्र का है, लावा मात्र साधु सिंह सर्व सिद्धिया। और आगे कहा गया है असत्संग त्याग ए वैष्णवाचार। तो भौतिकवादी की संगत उतना ही रखो जितना की आवश्यक हो, असत्संग त्याग ए वैष्णवाचार। अभक्तों की संगत से दूर रहो। तो आप कहोगे ये कैसे संभव है, हम जब प्रचार करने जाते हैं तो भी आपको भक्तों की संगत में आना पड़ता है, जब आप ग्रंथों के वितरण की सेवा करते हो तब भी आपको भक्तों की सेवा में संबंध में आना पड़ता है, आज आप नौकरी करते हो धंधा करते हो व्यापार करते हो वहां भी भक्तों की संगत में आना पड़ता है। तो उत्तर क्या है, उत्तर यह है उतना ही स्वीकार करो जितना कि आवश्यक हो और उससे अधिक नहीं। ये नहीं कि मानो आप ग्रंथों के वितरण की सेवा कर रहे हो और आप किसी के घर या दफ्तर जाओ और तीन चार घंटे लगा दो गप्पे मारना भौतिक विषयों की चर्चा करना, उतना ही समय काटो जितना कि आवश्यक हो। ये है इसका असली संदेश। और भक्तों का प्रयास रहना चाहिए कि भक्तों की संगत में हम रहें, और ये भक्तों की संगत हम दो माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, एक है भक्त भागवत और दूसरा है ग्रंथ भागवत। जब आप ग्रंथों का अध्ययन करते हो तो वो भी एक प्रकार की साधु, एक प्रकार का साधु संगत है। आप किसकी संगत प्राप्त कर रहे हो, व्यासदेव जी की, जो कि स्वयं भगवान के अवतार हैं, और व्यासदेव के साथ प्रभुपद और अनेक आचार्यों जिनके भावों को तात्पर्य में प्रस्तुत किया गया है, जब आप पढ़ते हो तो उनकी संगत भी प्राप्त करते हो। तो दोनों की आवश्यकता है, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत। श्री प्रभुपाद जी अमेरिका गए और वहां जाकर जब उन्होंने प्रचार का आंदोलन शुरू किया तो आस्ते आस्ते भक्त जुड़े और उनकी संगत के से प्रभावित होकर कृष्ण भक्ति फैली सारे विश्व में। और ये अनुभव किया जाता है आज भी कि अगर भक्त किसी स्थान में जाते हैं प्रचार करने के लिए, अपनी संगत देते हैं, तो फिर लोग आकर्षित हो जाते हैं। प्रभुपाद जी रशिया गए थे 5 दिनों के लिए, 5 दिन में उन्होंने एक भक्त बनाया और उस भक्त ने आगे प्रचार करके आगे हजारों को बनाया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज के वातावरण में भी आप देख सकते हो कि जहां की साधु संगत का हम लाभ उठाएं वहां हम भक्ति में के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो इसलिए इस विषय पर बल दिया जाता है शास्त्र में। भागवतम के चौथे स्कंद में नारद मुनि कहते हैं कि हम सब तीन प्रकार की संगत प्राप्त कर सकते हैं, तीन थ्री लेवल्स। एक है उनके साथ जो भक्ति में आपसे ज्यादा आगे हैं, एडवांस्ड हैं। दूसरा है आपके बराबर की संगत, इक्वल टू यू। तीसरा है जिसका आपसे कम आध्यात्मिक ज्ञान है और उनके प्रति क्या दया की भावना होनी चाहिए। तो किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए अलग अलग स्थितियों में। जब आपको सौभाग्य हो कि आप उनकी संगत में आओ जो भक्ति में आपसे आगे हैं, तो हमें प्रसन्न हो जाना चाहिए। और शास्त्र में उदाहरण दिया जाता है, जैसे कि जब बादल, जब मोर पीकॉक बादल को देखता है पहली बार तो फिर खुशी में नाचने लगता है। जब एक किसान बादल को देखता है खुश होता है, वर्षा आएगी अच्छी फसल होगी। तो उसी प्रकार शास्त्र में ये उदाहरण दिया जाता है बताने के लिए कि अगर हमें एडवांस भक्तों की संगत मिले तो हमें क्या होना चाहिए, हमें प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि इस संगत द्वारा आपको ऐसा उपदेश मिलेगा जिसके द्वारा आप जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। फिर दूसरी संगत किस प्रकार की है, अपने बराबर की, इक्वल टू यू। जब आप अपने बराबर के भक्तों को मिलो तो क्या भाव होना चाहिए, क्या भाव, कौन बताएगा? मित्रता का भाव। जब अपने बराबर के भक्तों मिलो तो मित्रता का भाव। मित्रता का भाव का क्या अर्थ है? मित्रता का भाव का अर्थ है कि हम एक दूसरे के उत्साह को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। भौतिक समाज में जब आप अपने बराबर के मित्र को भी मिलो तो आपको यही प्रयास रहता है कि आप ये बताओ आप उसे कितना अच्छे हो, आप उसे कितनी ज्यादा सफल हो, आप कैसे उससे ज्यादा आगे हो, है कि नहीं। पर भक्तों की संग में जब हम बराबर के भक्तों को मिलते हैं तो हमारा प्रयास रहता है कि हम एक दूसरे का उत्साह बढ़ाएं। और एक दूसरे का उत्साह कैसे बढ़ाओगे, एक दूसरे के गुणों को देखो और अवगुणों के बजाय गुणों को देखो और एक साथ मिलकर सेवा करो। चैतन्य महाप्रभु जी ने भी जब प्रचार का आंदोलन शुरू किया था तब ने भक्तों को एक साथ भेजा था प्रचार के लिए। जैसे आप पीछे वो डायग्राम देखते हो जहां के चैतन्य महाप्रभु मधाई का उद्धार कर रहे हैं। जब चैतन्य महाप्रभु जी ने अपना प्रचार का आंदोलन शुरू किया तो उन्होंने भगवान नित्यानंदा और हरिदास ठाकुर की एक जोड़ी बनाई और उन्होंने आदेश दिया, क्या, घर घर जाकर ये संदेश दो, बोलो कृष्ण बाजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी जब ये प्रचार का कार्य आरंभ किया तो उन्होंने अपने भक्तों को जोड़ा। जब चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा का मंदिर साफ कर रहे थे तो सारे भक्तों को जोड़ा, सब मिलकर ये सेवा कर रहे थे। तो मित्रता का भाव है कि जब हम दूसरे भक्तों को मिले जो हमारे बराबर के हैं तो हमें एक दूसरे के गुणों को देखना चाहिए, एक दूसरे का उत्साह बढ़ाना चाहिए और एक दूसरे का सहयोग देना चाहिए भगवान की सेवा करने के लिए। ये नहीं कि हम अड़चन डालें कि दूसरा व्यक्ति सेवा नहीं कर पाए। और जब आप उनको मिलते हो जो भक्ति में आपसे पीछे हैं, कम ज्ञान के हैं, तो उनके प्रति क्या भाव रहता है? क्या भाव? दया का भाव, कंपैशन। और दया का भाव का अर्थ है कि आप प्रयास करते हो उन्हें दिव्य ज्ञान पहुंचाने के लिए। तो हमारे शास्त्रों में कई स्थान हैं जहां की इस विषय पर बल दिया जा रहा है। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे, और जब वो दक्षिण भारत की यात्रा शुरू करने वाले थे तो सर्वम भट्टाचार्य, जो कि उस समय ऊंचे कोटि के मायावादी थे, महाप्रभु जी की संगत से इतने प्रभावित हुए कि वो भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। तो महाप्रभु को सर्वम भट्टाचार्य ने कहा, अगर आप दक्षिण भारत जा रहे हो तो वहां आपका परिचय होगा एक राजपाल के साथ जिनका नाम है रामानंद रॉय। तो गोदावरी नदी के तट पर, वहां इसका उनका एक खूबसूरत केंद्र है, गोदावरी नदी के तट पर चैतन्य महाप्रभु रामानंद रॉय से मिले, और चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद रॉय से अनेक प्रश्न पूछे। आप कहोगे ये कैसे संभव है, भगवान भक्त से प्रश्न पूछते हैं, अक्सर भक्त भगवान से पूछता है। तो भगवान भक्तों की महिमा को बढ़ाना चाहते हैं जैसे भक्त भगवान की महिमा को बढ़ाना चाहता है। तो भगवान ने अनेक प्रश्न पूछे, जैसे आप देखते हो कि भीष्म देव से भगवान युधिष्ठिर महाराज ने अनेक प्रश्न पूछे, जबकि भगवान भी वहां उपस्थित थे। भगवान ये बताना चाहते थे कि मेरा भक्त हर स्थिति में, उनका जो मन है बिल्कुल तेज रहता है। तो भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने अनेक प्रश्न पूछे, किन से? रामानंद रॉय से, जिनमें कि एक प्रश्न ये था कि इस विश्व में भक्त के लिए सबसे अधिक कष्ट किस कार्य द्वारा आ सकता है। और रामानंद रॉय ने बहुत सोचा और सोचकर कहा, भक्तों की संगत से जुदा हो जाना ये भक्तों के लिए सबसे कठिन स्थिति है, सबसे ज्यादा दर्द की स्थिति है। दूसरे शब्दों में, जब आप भक्तों से जुदा हो जाओ तो ये बड़ी कठिन स्थिति है, क्योंकि भक्तों की संगत से जुदा होना का अर्थ है भौतिकवादियों की संगत में रहना। तो रामानंद रॉय ने कहा, ये है सबसे कठिन स्थिति हर भक्त के लिए। तो दूसरे शब्दों में, हमारे महात्माओं ने, हमारे संतों ने, शास्त्रों में स्पष्ट उपदेश मिलता है किस प्रकार आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हो, किस प्रकार भक्ति आपकी नष्ट हो जाती है। तो जब आप भक्तों की संग में रहोगे तो क्या ज्ञान मिलेगा? आपको ज्ञान मिलेगा भक्ति का, क्योंकि भक्तों के मन में और कोई भाव नहीं रहता। भगवान के भक्तों का क्या लक्षण, जैसे कि आप शास्त्र में पढ़ते हो, साधु संगत सर्व सहसगाए, तो साधु किसे कहते हैं? साधु की कुछ पहचान है या नहीं? क्या है साधु की पहचान? साधु की एक पहचान वो है कि उसका आचरण जो है शास्त्र पर आधारित। शास्त्र, साधु की अगली पहचान यह है कि वो जुड़ा हुआ है भगवान की सेवा में, उसके मन में एक ही भाव है किस प्रकार कृष्ण भक्ति को निभाना। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसे स्वीकार करो और जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसे त्यागो। और रूपक गोस्वामी जी कहते हैं किसी हालत में भी त्यागो। तो साधु वो है जो कि शास्त्र पर आधारित उपदेश देता है और जिसका अपना आचरण शास्त्र पर आधारित हो। तो यहां जन भारत कह रहे हैं अगर आप भक्तों की संगत में रहोगे तो आपको असली ज्ञान प्राप्त होगा। तो अनेक प्रकार के ज्ञान है, भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, और आध्यात्मिक ज्ञान के भी अनेक क्षेत्र हैं, पर सबसे उत्तम ज्ञान क्या है? भक्ति योग का ज्ञान। जैसे कि भगवद गीता का निचोड़ क्या है? भक्तिया माम अभिजानति। श्रीमद् भागवत का निचोड़ क्या है? शुद्ध भक्ति। सर्वे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षदे, शुद्ध भक्ति। तो शास्त्रों का निर्णय है शुद्ध भक्ति। तो जब आप संतों की संगत में रहोगे तो आपको वो ज्ञान मिलेगा। क्या ज्ञान? शुद्ध भक्ति का, कि भक्ति के नियमों को कैसे आप उनका पालन कर सकते हो। और अगर आप इस ज्ञान का लाभ उठाओगे तो जो अज्ञानता का प्रभाव है, इल्यूजरी कॉन्सेप्ट, ये नष्ट हो जाएंगे। जैसे कि भगवान स्वयं कहते हैं देवेश गुणमाय मामा माया दुर्दया। इस त्रैगुणी माया का विरोध करना बड़ा कठिन है, पर अगर कोई मेरी शरणागत होता है, मेरी शरण में आता है, तो इसका विरोध कर सकता है। आप सबका अनुभव होगा कि जब आप बड़े ध्यान से जाप करते हो, जब आप बड़े ध्यान से अच्छी साधना रखते हो, तो आपका आध्यात्मिक उत्साह ऊंचा रहता है। सच बात है। और जब आपकी साधना कमजोर हो जाए, जब महाराज कमजोर हो जाए, जब आप अभक्तों की संग में अधिक समय काटो, तो भक्ति की रुचि कम हो जाती है। हमारे शास्त्रों में हमें स्पष्ट ज्ञान है किस रूप से आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हो, किस रूप में भक्ति नष्ट हो सकती है। तो यहां जद भारत कह रहे हैं कि ज्ञान के तलवार से आप अज्ञानता को दूर कर सकते हो। जैसे कि भगवद गीता के तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा काम ऐसे क्रोध ऐसे, और फिर आगे कहा भगवान ने कि जो कामा है, जो आपका शत्रु है आध्यात्मिक जीवन का, इसके निवास का स्थान कहां है? मन में, आगे बुद्धि में, आगे इंद्रियों में। जैसे आपने पहचान लिया कोई चोर उग्रवादी आ गया है बॉम्बे में, तो अगला प्रश्न हो गए कहां है ये उग्रवादी? तो कामा है आपका शत्रु, कहां है? मन में, बुद्धि में और इंद्रियों में। फिर आगे भगवान क्या कहते हैं? ज्ञान के तलवार से इसे क्या करो? काटो, दूर करो। तो जिस प्रकार अंधेरापन रोशनी से दूर हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान से अज्ञानता दूर होती है। इस विषय में चैतन्य चरितमृत में कहा गया है कृष्णा सूर्य समाहाया अंधकारा, यहां कृष्णता ही नहीं माया अधिकारा। जिस प्रकार जहां सूर्य होता है वहां अंधेरापन नहीं, उसी प्रकार जहां कृष्णा है वहां माया का प्रभाव नहीं रहेगा। दूसरे शब्दों में साधु की संगत में रहोगे तो आपको अस्ति दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। जब आप इस दिव्य ज्ञान का उपयोग करोगे तो फिर आप अज्ञानता से बच सकते हो। हमारा सौभाग्य यह है कि हमारे पास सारे हथियार हैं माया का विरोध करने के लिए। समस्या केवल यह है कि हम इन हथियारों का उपयोग नहीं करते। तो यहां हज्जत भारत कह रहे हैं भक्तों की संगत में रहो, अभक्तों की संगत उतना ही रखो जितना कि आवश्यक हो, और साधु संगत में रहोगे तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा, और इस दिव्य ज्ञान के उपयोग से अज्ञानता जो है दूर हो सकती है। और आप भक्तों के संग में रहकर भगवान की सेवा आरंभ करोगे, किस माध्यम के द्वारा, किस माध्यम के द्वारा, श्रवणम और कीर्तनम के द्वारा। इस श्लोक में जद भारत कह रहे हैं बड़े स्पष्ट रूप से कि भक्तों की संग के द्वारा जो ज्ञान मिलेगा उस ज्ञान के उपयोग से माया का प्रभाव आप दूर कर सकते हो। और इस ज्ञान का अर्थ है श्रवणम और कीर्तनम में रुचि लेना। हमारा आध्यात्मिक जीवन निर्भर है इस कार्य के ऊपर। अगर आप श्रवणम कीर्तनम करोगे ध्यान से तो फिर आप माया का विरोध कर सकोगे। हरि नाम का लाभ हर स्थिति में है, पर अगर आप हरि नाम का पूरा लाभ उठाना चाहते हो तो हमें क्या करना चाहिए, ध्यान पूर्वक जाप करना चाहिए। एक समय एक फिल्मी कलाकार ने एक सिनेमा बनाया था हरे रामा हरे कृष्णा जय, और वो फिल्म काफी चल गई थी। वो फिल्म बनाई थी इस्कॉन के भक्त भारत में आए थे, उसके पश्चात जब इस्कॉन के भक्त आए थे पहली बार बॉम्बे और भारत में तो काफी लोग आकर्षित हो गए थे ये देखकर। तो इस फिल्मी कलाकार ने फिल्म बनाई जिसमें संदेश थोड़ा गलत था, ये बताया था कि भंग लेते हैं लोग और फिर हरे कृष्णा बोलते हैं। पर अच्छी चीज ये थी फिल्म में कि हरे कृष्ण धूम हरे कृष्ण महामंत्र पूरी फिल्म में बज रहा था। तो हमने एक प्रभुपाद जी से कहा 73 में कि प्रभुपाद जी ये फिल्म तो हमारा नाम खराब कर देगी। प्रभुपाद ने कहा नो नथिंग विल बी लॉस्ट, पीपल विल हियर हरे कृष्ण एंड बेनिफिट, कि लोग हरि नाम सुनेंगे और कुछ तो लाभ उन्हें मिलेगा। तो हरि नाम का लाभ तो हर स्थिति में है, पर हम उस स्थिति पर नहीं है। हम हरि नाम का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, हम हरि नाम का लाभ उठाना चाहते हैं किस लिए, कि क्या प्राप्त करने के लिए, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए। और इसलिए शास्त्रों का निर्णय है, संतों का उपदेश है कि हमें ध्यान पूर्वक जाप करने का प्रयास करना चाहिए। और आप देखोगे जितने ध्यान से आप जाप करोगे उतनी तेजी के साथ जो माया का प्रभाव है दूर होगा। और फिर जद भारत जी क्या कह रहे हैं, आप इस जीवन में ही कहां जा सकोगे, भगवान के धाम लौट सकोगे। दूसरे शब्दों में जब कोई भक्त भगवान की सेवा में जुड़ा है तो आप ये नहीं कह सकते वो भौतिक जगत में है। जैसे उदाहरण के लिए यहां हरे कृष्णा लैन, वैसे भौतिक दृष्टि से देखा जाए मंदिर जुहू में है बॉम्बे में है, पर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए ये मंदिर कहां है, वैकुंठ धाम में। प्रभुपाद जी ने स्पष्ट कहा ये जो हमारे इस्कॉन के मंदिर हैं ये बॉम्बे दिल्ली कलकत्ता में नहीं है, कहां है, वैकुंठ धाम में। तो जहां भगवान का गुणगान हो, जहां भगवान की सेवा हो, वो स्थान क्या बन जाता है, वैकुंठ धाम बन जाता है। तो अगर कोई भक्त तन मन धन से भगवान की सेवा में जुड़ा है तो उसको ये भौतिक शरीर जो है उसे भगवान के धाम में ले जाएगा। तो दूसरे शब्दों में असली आनंद सुख शांति अगर आप अनुभव करना चाहते हो तो क्या है उपाय, भगवत सेवा ही एक उपाय है। तो जन भारत का उपदेश बड़ा महत्वपूर्ण है। कई बार हम जब भक्तों की संगत में रहते हैं हम नुकसों को ज्यादा देते हैं देखते हैं। एक समय मुझे याद है एक अफ्रीका से एक भक्त आए थे जो प्रभुपाद जी से कह रहे थे मैं हरिदास ठाकुर जैसे एकांत में रहकर जाप करना चाहता हूं। प्रभुपाद ने बहुत काफी विनती की, नहीं भक्तों के संग में रहो, मंदिर में रहो, एक साल में खुश नहीं है तो दूसरे मंदिर चले जाओ। प्रेज्ञ भक्त ने बड़ी जिद की, नहीं नहीं नहीं, मैं अकेले रहकर जाप करना चाहता हूं। तो अंत में उनके लिए सुविधा बनाई थी मायापुर में, यहां की एक कुटिया में वो जाप कर रहे थे अकेले। थोड़े दिनों उन्होंने जाप किया, उसके बाद किसी ने उन्हें देखा भी नहीं। तो हम सबका अनुभव है कि भक्तों के संग में रहकर भक्ति का पालन सरल हो जाता है। और श्री प्रभुपाद जी ने ये इतनी अच्छी संस्था बनाई है जहां की हमें पूरी सुविधा है, किसके लिए? भक्तों की संगत में रहने के लिए। तो चाहे आप गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी, जो ब्रह्मचारी हैं उनके पास और सुविधा है, मंदिर में रह सकते हैं। पर जो घरों में भी रहते हैं उनका भी प्रयास रहना चाहिए, कम से कम हफ्ते में एक बार मंदिर आए, हफ्ते में एक दो बार क्लास में आए, सत्संग में आए। और इस प्रकार भक्तों के संग में रहोगे तो आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ेगा। चैतन्य चरितमृत में आप पढ़ते हो किस प्रकार नारद मुनि ने एक भयंकर शिकारी जिसका नाम था मृगारी का उद्धार किया। मृगारी को बड़ा आनंद आता था पुष्यों को घायल करके, और फिर जब उनकी मृत्यु होती थी उनको वो बेचता था। और नारद मुनि ने जब ये देखा, कहा, तुम जानते हो इसका क्या परिणाम होगा? मृगारी ने कहा, यह तो मेरा खानदानी धंधा है। जब उसे नारद मुनि द्वारा सुना क्या परिणाम होगा, उसे निर्णय कर लिया कि ये धंधा मुझे छोड़ना है। और पूछा उसने, अगर मैं ये धंधा छोड़ दूंगा तो मेरी रोटी कहां से आएगी? नारद मुनि ने कहा, घबराओ मत। खबर फैल गई कि वो भयंकर शिकारी भगवान का उच्च कोटि का भक्त बन गया। दूर दूर से लोग आने लगे, और ये रिवाज है, अब संत को जब मिलने जाओ तो खाली हाथ नहीं जाते, तो सब कुछ जो कुछ ला रहे थे। और मृगारी ने देखा कि भगवान की कृपा से हर आवश्यकता प्राप्त हो रही थी। तो इस प्रकार अनेक उदाहरण हैं कि किस प्रकार साधु संघ द्वारा आध्यात्मिक जीवन आरंभ हो जाता है। तो जन भारत का जो उपदेश है उसका हमें लाभ उठाना चाहिए। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि भक्तों के संघ में रहकर कृष्ण भक्ति में आप आगे बढ़ सकते हो। और ये कृष्ण भक्ति का मौका हर व्यक्ति को दिया जा रहा है। कृष्ण भक्ति है हर व्यक्ति के लिए, पूरे समाज के लिए। भगवान ने क्या कहा, हम बीजा प्रदापिता। जब प्रभुपाद जी ने विदेशी भक्तों को ब्राह्मण दीक्षा दी तो कई भारतीय ब्राह्मण कहने लगे, देखो भक्तिवृंद स्वामी ने हमारी संस्कृति को खराब कर दिया, इन मृत्युओं को ब्राह्मण बना दिया। एक समय किसी ने प्रभुपाद से पूछा, स्वामी जी आप कुछ चमत्कार कर सकते हो? स्वामी जी ने कहा, नहीं, कोई चमत्कार नहीं कर सकता, पर एक चमत्कार जरूर किया है मैंने। क्या? हजारों मृत्युओं को मैंने ब्राह्मण बना दिया है। तो कई लोग जो पाप की सेवा में जुड़े थे बचपन से, आज उन्हें ऊंचे कोटि का ब्राह्मण बना दिया है। तो कई भारतीय ब्राह्मण लोग इस विषय की निंदा कर रहे थे, भक्तिवृंद स्वामी ने विदेशियों को ब्राह्मण बना दिया। फिर प्रभुपाद जी शास्त्रों द्वारा यह स्थापित करते थे कि व्यक्ति ब्राह्मण बनता है गुणों पर आधारित, जन्म पर आधारित नहीं। तो हमें साधु संगत का लाभ उठाना चाहिए, एक दूसरे का उत्साह बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग देना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और श्रवणम कीर्तनम का बड़े ध्यान से पालन करना चाहिए। हमारा आध्यात्मिक जीवन निर्भर है इस श्रवणम कीर्तनम के प्रयास के ऊपर। और आप सबका अनुभव है कि जिस जिन दिनों में आप बड़े ध्यान से करते हो श्रवणम कीर्तनम, आपका उत्साह तेज रहता है और माया को सरलता से छिन्न भिन्न कर लेते हो। और जिन दिनों में आप शरणम की तरफ नहीं करते ध्यान से, उस दिन उत्साह कम रहता है। कई बार यह भाव आता है, चलो हम क्या करें, भक्ति में घर चलो। तो हमारा असली घर क्या है? भगवान का धाम। तो भक्ति योग एक साधन है जिसके द्वारा भगवान को आकर्षित कर सकते हो। और भक्तों का प्रयास रहना चाहिए कि वो निरंतर भगवान के नामों का उच्चारण करे। जब श्रील प्रभुपाद जी ने संस्था आरंभ की थी, उन्होंने शुरू में भक्तों को 64 माला करने की जिम्मेदारी दी थी। 64 माला भक्तों ने प्रयास किया थोड़े दिनों के लिए, वो नहीं कर पाए। तो प्रभुपाद जी के पास आके कहने लगे, स्वामी वी कैन डू 64 राउंड, 64 माला बहुत मुश्किल है। फिर प्रभुपाद ने कहा, ओके डू 32, 32 माला कर। फिर उन्होंने 32 माला भी प्रयास की, वो भी नहीं कर पाए रोज। तो वो प्रभुपाद जी के पास लौट कर कहने लगे, स्वामी 32 राउंड इज वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो। फिर प्रभुपाद ने कहा, 16 राउंड एंड नो लेस। तो वैसे तो हम सबकी जिम्मेदारी है 16 माला करने के लिए, पर अगर आप ज्यादा कर सको तो कोई इतराज नहीं है, पर 16 से कम नहीं करो। तो हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम निरंतर सदा भगवान के नामों का उच्चारण करते रहें, और ये भाव रहेगा तो बिना शंका के आप भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकोगे। और क्या प्राप्त होगा? भगवत प्रेम प्राप्त होगा, कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, जो कि हर व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। क्या लक्ष्य होना चाहिए? कि कृष्ण प्रेम। और इस श्लोक में जद भारत हमें उपदेश दे रहे हैं कि किस प्रकार से आप कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हो। हरे कृष्णा। एक दो प्रश्न है तो ले सकता हूँ, फिर मुझे जाना है। हाँ, ज्यादा छोटी क्लास तो नहीं थी, नहीं नहीं। हाँ जल्दी।
जो लोग डेमी गॉड्स के ऊपर ज्यादा आकर्षित रहते हैं पूरे जीवन में, वो माया के चक्र में है, ऐसा हम कह सकते हैं?
वो क्या?
जो डेमी गॉड्स की सेवा करते हैं, उनके प्रति आकर्षित रहते हैं पूरे जीवन में, तो वो क्या माया के चक्र में है, माया से प्रभावित है?
भगवान कहते हैं गीता में, कम बुद्धि के व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, वह देवताओं द्वारा जो वर प्राप्त हो रहा है वह मैं ही दे रहा हूं, तो मेरे शरण में आओ। तो अक्सर देवताओं की पूजा वो करते हैं जिनकी अनेक प्रकार की भौतिक इच्छाएं हैं। मैं यही नहीं कह रहा कि जो कृष्ण भक्ति में आते हैं उनकी भौतिक इच्छाएं नहीं है, पर भगवान कहते हैं मेरी शरण में आओ, और भगवान की शरण में आओगे तो चाहे भौतिक विचार भी हो, आस्ते आस्ते आप उनसे मुक्त हो जाओगे। के यस यस बोलिए बोलिए जल्दी।
कृष्ण महाराज, महाराज जी आपने जो कहा सही है, मेरा भी अनुभव है कि जब हम अच्छी साधना करते तब माया हमें इतना, हमें बहुत सहयोग मिलता है और बहुत स्ट्रांग हो जाते हम भक्ति में। महाराज जी मेरा ये प्रश्न है कि भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आओ, और मैं तो साधक हूँ, तो साधक के हिसाब से मैं प्रयास करता हूँ भगवान की शरण में लेने के लिए, तो कभी कभार ऐसा होता है कि माया बहुत भारी पड़ जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? भगवान बोलते मेरी शरण में आओ,
माया भारी पड़ जाती है
कभी कभार?
ये माया भारी है, ये सच कह रहे हैं। अगर आप कहो कि नहीं नहीं हमें माया छू नहीं सकती, हम तो बड़े पहलवान हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि माया किसी को भी प्रभावित कर सकती है। एक समय प्रभुपाद जी गोविंदम टेप के साथ ठाकुर जी का स्वागत कर रहे थे, तो समाप्ति पर भक्तों ने पूछा, व्हाट वर यू प्रेइंग श्रील प्रभुपाद, आप क्या प्रार्थना कर रहे थे? तो प्रभुपाद ने कहा, आई वॉज प्रेइंग टू कृष्णा दैट आई मे नॉट फॉल इन माया। भगवान से यह प्रार्थना कर रहा था कि मुझे माया इतना ही छुए। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो भी ये प्रार्थना करते हैं कि माया हमें नहीं छुए, बड़े ध्यान पूर्वक रहते हैं। हमारी तो बात ही छोड़ो, हमें तो बिल्कुल सावधान रहना पड़ेगा तो ही हम माया से बच पाएंगे। अगर हम कहें नहीं नहीं हम तो परमहंस हैं हमें माया नहीं छोड़ेगी तो ये खतरनाक स्थिति है। तो हमें हमेशा सोचना चाहिए माया बड़ी भगवान है और किसी समय भी हमें पकड़ सकती है, तो हमें सदा सावधान रहना चाहिए। ओके हरे कृष्णा।
इस लीलाएं गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की, श्री प्रभुपाद की।